चाहिए। श्रीमद रायचंद एक बार अपने मुक्षुओं के साथ चले जा रहे थे रास्ते से, और अचानक सामने से एक सिर पर घड़ा रखकर और एक हाथ में घड़ा लिए व्यक्ति को आते देख करके अपने मुमुक्षुओं से पूछा कि भाई बता सकते हो कि इसको धक्का लगने पर जी कौन सा वाले घड़े को पहले संभालेगा, जो सिर पे लिए बड़ा उसको या कि हाथ में लिए छोटा उसको। अब इतनी तत्व तो चर्चा करने वाला इतनी छोटी सी चीज पूछे तो जरा मन में आता तो है कि कोई ना कोई बात तो है, ऐसी छोटी सी चीज काय को पूछेंगे इतना तत्व ज्ञानी होने के बाद। तो थोड़ी मुश्किल में आए और विचार किया कि ऐसा क्यों पूछ रहे। समझ में आया ये जो बड़ा घड़ा है इसमें तो छाछ होगी और छोटा घड़ा है उसमें इस छाछ में से निकला हुआ मक्खन होगा, ये कोई भी व्यक्ति आसानी से जान सकता है। वे देना चाहते थे इसके माध्यम से उपदेश। बताने वालों ने तो यही कहा कि जब धक्का लगेगा और गिरने की बात आएगी तो सबसे पहले हाथ का घड़ा संभालेगा, जिस सिर वाला गिरता हो तो गिर जाने देगा। तो फौरन कहा कि ऐसे ही समय आ जावे, काल आ जावे, मृत्यु सम्मुख आ जावे तो किसको बचाओगे, इसको या कि भीतर के चेतना को। अब लो उस समय तो इसी को बचाने की रहती है कि डॉक्टर को बुला लो, भर्ती करवा लो, महाराज को बुला लो संलेखना के लिए, नहीं पहले उनको बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इंजेक्शन लगवाओ, ड्रिप लगवाओ, हॉस्पिटलाइज कर दो, नहीं हो तो बंबई ले चलो, दिल्ली ले चलो, नहीं जबलपुर ले चलो, नहीं ऐसा नहीं, कोई नहीं कहेगा कि जबलपुर ले चलो उतरे आचार्य महाराज के सानिध्य में, पहले कहेगा कि बंबई ले चलो, दिल्ली ले चलो। इस देह की संभाल की दृष्टि है, मेरे परिणाम संभालने की दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि मुझे प्राप्त करनी चाहिए। मैं संभालूं किसको, जो नष्ट होने वाला है उससे संभाल करके क्या करूंगा, जो शाश्वत है उसकी संभाल करूं, मेरी चेतना शाश्वत है, उसकी निर्मलता शाश्वत है, वो बनी रहे, मैं उसे बचाऊं, मैं उसे मलिन न होने दूं। देह की मलिनता से चिंतित होने वाले हम लोग अगर थोड़ी दृष्टि बदल जाए तो अपने चेतना को मलिन करने वाले राग देश से बचने का प्रयास करेंगे। बाहर की गंदगी से तो बचने का बहुत प्रयास करते हैं कि कछु खराब चीज न लग जावे, सो बहुत अच्छा है भैया, लेकिन ऐसा ही बचने का भाव ये आ जावे कि जी व्यक्ति ऐसा है जो राग द्वेष करता, भैया इसे बचो, जी यहां ऐसी बात है जिसमें राग द्वेष होगा, मेरी चेतना मलन होगी, इससे बचो, ऐसा भाव भी आने लगे तो समझिएगा कि अब अपन को दृष्टि ठीक ठीक प्राप्त हो गई है। उदयन राजा और महारानी प्रभावती निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए, जैसे अंजन चोर निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुए, अनंतमती जो है वो निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई, ऐसे ही इसमें भी नाम आता है उदयन राजा और प्रभावती रानी का। जे मौसी जी थी भगवान महावीर स्वामी की, हाँ जी है प्रभावती सो यती सात बहने हती जी, हाँ सात में ये तीसरे या चौथे नंबर की थी, सबसे बड़ी चेलना महारानी जो कि सैनिक राजा को ब्याही, फिर त्रिष्टा माँ जो कि भगवान महावीर स्वामी की माँ थी। तो उनके यहां पर चौका लगा और महाराज आए, वो महाराज कोई देव बन करके आया था, क्योंकि स्वर्ग में इस बात की चर्चा चली तत्व चर्चा के समय, क्या चर्चा चली कि भाई सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग के लिए अगर आप देखना चाहें कि किसके भीतर प्रमुख रूप से हैं, वे तो सम्यक दृष्टि के आठों अंग आठों गुण सब रहते हैं एक साथ, लेकिन उसमें से कोई निर्विचिकित्सा अंग को विशेष रूप से देखना चाहे तो राजा उदयन और प्रभावती की निर्विचिकित्सा सराहनीय है, ऐसी चर्चा चली थी। तब वो देव उनकी परीक्षा लेने मुनि बनकर के आ गए और वे तो गदगद होकर के पड़गाते हैं, नौदा भक्ति करते हैं, और आहार देते हो और पूरा आहार होते ही वह देव अपनी विक्रिया के द्वारा और पूरे वमन के द्वारा पूरे चौके में दुर्गंध फैला देता है। उतनी दुर्गंध के बीच भी महाराज की पूरी देह उससे लिप्त हो गई, उस वमन से, फिर भी उनके चेहरे पर ग्लानी नहीं है, पीड़ा का भाव अवश्य है। और पीड़ा किस बात की कि धिक्कार है मुझे, मैंने ऐसा कैसा वृद्ध आहार दे दिया जिससे कि महाराज को वमन हो गया, क्या करूं, अब ये तो दूसरी बार ग्रहण नहीं करेंगे। और जल्दी से आंगन फांगन सब साफ करता, महाराज की देह को साफ करता, अत्यंत दुर्गंध के बावजूद भी उनकी देह को पहुंच रहे हैं दोनों मिलकर के। अब दोनों मिलकर के कह दई सो 213 महीने पड़ जाइयो, नहीं तो बहुत जल्दी पड़ जाओ, क्योंकि दो जनों की कह दे। अब दो जनों की यदि सो जैसो भाव ये सो वैसो भाव ये, न तुम देख भी गए थे नहीं हम आते, जैसी पहुंची हुई ये सो वैसो भाव भी, अभी मैं नहीं तो वही मैं आप ले लो कि महाराज तो ऐसी कह रहे थे। मूल बात से चूक करके अभी तक यही हुआ है कि जो मूल बात है वो तो छूट जाती है और बाकी में उलझ के रह जाती है। अपनी दृष्टि ऐसी है, क्या करें। उन्होंने तो दोनों ने उस दुर्गंध को जीत करके महाराज की जो जैसी सेवा हो सकती थी वो करी और ग्लानी नहीं करी। यही उनकी दृष्टि की निर्मलता है, यही उनके निर्विचिकित्सा अंग की विशेषता है। सो अपने को भी ऐसा ही अपने भीतर भाव अपना लाना चाहिए। मुख्य तो बात अपन को समझने की ये है, अपन तो बाह्य में देख करके और जल्दी से ग्लानी कर लेते हैं, घृणा करने लगते हैं। लेकिन अगर अच्छी दृष्टि अपनी होवे तो कहते जरूर हैं कि दोषवादे चमोनम सद्वत्ता नाम गुणगण कथा, सज्जन पुरुषों के गुणों की चर्चा करनी चाहिए। दोष अगर दिख जावे तो दोषवादे चमोनम, ये तो सब केवे की बातें हैं, हैं? कहने सुनने में अच्छी लगती, मनो जीवन में आ जावे तो क्या बात है, जीवन में तो बहुत मुश्किल से आएंगी, जीवन भर का अभ्यास होगा तब आप आएंगी। कोशिश करें अपन कि हम बाहर की मलिनता को देख करके घृणा ना करें, अंतरंग के गुणों से प्रेम रखते हुए वैसे ही गुणों को मैं भी प्राप्त करूं ऐसी भावना करें। तो रत्नत्रय की आराधना करके हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। यह दृष्टि की निर्मलता हमारे भीतर बाह्य जो पर पदार्थ हैं उनसे घृणा से बचाती है और अपने स्वभाव की तरफ ले जाती है और उसको उज्जवल बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम सब ऐसी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।